पहले सत्र में हमने स्वस्थिति की महसूसता की। मैं कौन हूँ, दुनिया में मैं कौन को जिस रूप से जाना है और हमें बाबा ने मैं कौन को जिस रूप से समझाया है, उसी कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हैं। हम स्व की गहराई में चले जाएं, सिर्फ सुनने तक नहीं लेकिन स्व का चिंतन करके हम स्व को अच्छी तरह से महसूस करें। बरोबर मैं यही हूँ, ये अनुभूति हमें यहाँ से लेकर के उठना है। और आज इसी अनुभूति के लिए हमारे बीच में डॉक्टर सविता बहन है। हम एक हाथ की ताली से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले 40 वर्षों से बाप दादा का हाथ आपने पकड़ा है और 27 वर्षों से समर्पित रूप से यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप डबल डॉक्टर हैं और विशेषकर हमारे यज्ञ में हमारे सभी मुरब्बे वरिष्ठ बहनों के साथ विशेषकर आप फुल टाइम सेवा में रहती हैं, ताकि एक सुरक्षा कवच स्वास्थ्य के हिसाब से उन्हें हमेशा बना रहे। इसलिए आपका यज्ञ में बहुत स्पेशल रोल है। इसके अलावा विशेषकर महिला प्रभाग में मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप से जब से आपने कार्यभार को संभाला है, एक नई ऊंचाई प्रदान की है। पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए काफी कैंपेन्स को आपने लीड किया है और अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय को लेकर के महिला विंग के बहुत सारे कार्यक्रमों को भी आप अपना नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। देश विदेश में स्वाभाविक रूप से बाबा ने आपको एक माध्यम के रूप में बहुत सारे स्थानों पर यूज किया है और आपके द्वारा बहुत स्पेशल सेवाएं भी करवाई हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज का हमारा जो विशेष रियलाइजेशन या आत्मनिरीक्षण कहो या इंट्रोस्पेक्शन का सेशन कहो, हमें गहराई के तह तक ले जाएं, हम उसी अनुभूति में खो जाएं और यहाँ से स्वयं को एक नई रूपरेखा के साथ लेकर के उठेंगे। बहन डॉक्टर सविता जी,
ओम शांति। मधुबन में भर्ती करने आए हैं तो भर्ती करने का अर्थ ही है, जो भी हमारी रही हुई कमियां हैं उन कमियों को हम बहुत बारीकी से सूक्ष्मता से चेकिंग करें, क्योंकि समय मिलता है जहां अपने स्थानों पर रहते हैं वहां तो दिन भर व्यस्त होते हैं, उतना समय नहीं मिलता है कि हम लंबा समय तक बैठ करके स्वस्थिति को महसूस करें या आत्मनिरीक्षण करें। लेकिन यहाँ सारे कारोबार से सभी बातों से मुक्त हैं और बहुत ही न्यूट्रल रूप से, निरपेक्ष भाव से जिसे हम कहेंगे, आप वो चिंतन भी कर सकते हैं, अपने आप को देख भी सकते हैं। तो वैसे तो हमेशा क्लासेस होती रही हैं, पिछले 3-4 सालों से यहाँ मधुबन में भतियाँ चल रही हैं, तो क्लासेस ही ज़्यादा होते हैं और योग शाम को 1 घंटा होता रहा है। लेकिन इस बार ये थोड़ा परिवर्तन किया है कि 1 क्लास करने के बाद फिर हम थोड़ा उसकी गहराई में जाएं और उसे अनुभव करें। तो स्वस्थिति पर ही हम आत्मनिरीक्षण करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी, वो प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, क्या हमारी वो स्थिति बनी है, और अगर नहीं बनी है तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है जिससे हमारी वो स्थिति बने। तो सबसे पहली चेकिंग तो स्वस्थिति की है कि मैं आत्मा हूं, ये समझ तो है मुझे, लेकिन कितना समय मेरी आत्मअभिमानी स्थिति रहती है सारे दिन में। चेकिंग करें अपनी कि मेरी आत्मअभिमानी स्थिति कितना समय रहती है, क्या निरंतर रहती है या बहुत मेहनत करने के बाद बनती है, या सिर्फ जब योग में बैठते हैं तब थोड़ी महसूसता होती है, और न सिर्फ मैं आत्मा हूं लेकिन बाबा ने हमें याद दिलाया है मैं कौन सी आत्मा हूं। जैसे आज का हमारा स्वमान है, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो जो अनेक स्वमान याद दिलाए हैं बाबा ने, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो क्या मुझे अपने निजी स्वधर्म की, निजी गुणों की भी अनुभूति होती है? आज मुरली में बाबा ने कहा, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर स्मृति समर्थ है तो स्थिति भी समर्थ होगी। तो क्या सारा दिन मेरी ये स्मृति रहती है मैं कौन सी आत्मा हूं? केवल आत्मा हूं नहीं, तो आप चेक करिए अपने आप को। थोड़ा हम पॉज करेंगे बीच बीच में, ताकि आप अपना पूरा दिनचर्या या आपका जो भी पिछला समय है उसमें आप अपने आप को चेक कर पाएं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, क्या मेरी शांति किसी के अपमानजनक शब्द कहने से या कोई परिस्थिति उत्पन्न होने से, किसी समस्या से अशांति में बदल जाती है? या मुझे ही क्रोध आ जाता है, शांति के विपरीत क्रोध है? और यदि मैं अशांत होती हूं तो कितना समय वो अशांति चलती है, कितने समय में मैं पुनः अपनी स्व स्थिति में वापस आ सकती हूँ। क्या कैसी भी आत्मा मेरे सामने आए, अर्थात जिस आत्मा से मेरे विचार नहीं मिलते हैं या जिनसे हमारा कोई हिसाब किताब है, उस आत्मा के प्रति भी मेरी शुभ भावना रहती है। उसको देखकर या उसके संपर्क में आने से मेरा मन अशांत तो नहीं होता है? मेरी स्वस्थिति हलचल में तो नहीं आती है? तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ये केवल जानना नहीं है, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, मनन करना है, इसकी गहराई में जाना है। जैसे भोजन का एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि भोजन हम खाते हैं तो वो हजम होता है, तब खून बनता है, तब वो शरीर की शक्ति बनता है। तो ऐसे ही मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्या ये मैंने स्वरूप अपना अनुभव करके बना लिया है? मैं इस स्वरूप में सदा स्थित रह सकती हूँ? और यदि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो साइलेंस शक्ति साइंस से भी ऊंची है। साइलेंस पावर साइंस की पावर से भी श्रेष्ठ पावर है। और तब यदि हम अपने मनसा वाइब्रेशंस फैलाते हैं, जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करते हैं वो संकल्प हमारे सिद्ध होते हैं। आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का जो गुण है, हम उसको चेक करें, क्या मेरी पवित्र स्थिति सदा रहती है? मेरी आत्मिक दृष्टि अन्य आत्माओं के प्रति सदा रहती है? कैसी भी परिस्थिति में, मानो कोई वातावरण का प्रभाव है या किसी व्यक्ति का प्रभाव है, तो भी मेरी दृष्टि वृत्ति सदा शुद्ध रहती है? अपनी चेकिंग करें। और यदि परिवर्तन होती है तो मुझे कितना समय लगता है पुनः अपनी आदि अनादि पवित्र स्वरूप का अनुभव करने में? तो अपने को स्मृति दिलाएं कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है और अपनी इस धारणा को जो बाबा कहता है धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, चाहे जो हो जाए उसके लिए चाहे मुझे कुछ सहन करना पड़ता है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ सामना भी करना पड़े, लेकिन मुझे अपनी पवित्रता को निरंतर बनाए रखना है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। यदि मेरे मन में दुख की फीलिंग आती है किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के वश, का अर्थ मेरी पवित्रता की श्रेष्ठता में कमी है। हम दुख देते तो नहीं हैं लेकिन दुख ले लेते हैं, तो अगर मैं फीलिंग में आ जाती हूं बहुत जल्दी मुझ पर प्रभाव हो जाता है, तो इसका अर्थ है अभी भी मुझ में देह अभिमान है। फिर अपने योग की स्थिति को चेक करें। मैं जब भी बाबा की याद में बैठती हूं मेरा मन सहज ही बाबा की लगन में मगन हो जाता है, या व्यर्थ संकल्प चलते हैं, परचिंतन चलता है, समस्याओं का चिंतन चलता है और सारा समय युद्ध में ही बीत जाता है। दो स्थिति हो सकती है, या तो हम एकाग्र हो जाते हैं बाबा की याद में और या फिर युद्ध कर रहे होते हैं कि मेरा योग बाबा से लग जाए। तो मेरी योग की स्थिति कैसी है वर्तमान समय? योग में जो स्थिति मैं बनाना चाहती हूं क्या वो स्थिति मेरी बन जाती है? यदि मैं बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करना चाहूं, परम धाम में बाबा के साथ अपनी सर्वगुण संपन्न सर्वशक्ति संपन्न स्थिति का अनुभव तो क्या मेरा मन एकाग्र हो जाता है? या मेरे लिए बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करना बहुत कठिन है? मैं जब चाहे अपनी अव्यक्त स्थिति अर्थात अपना संपूर्ण स्वरूप जो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप है उस फरिश्ते स्वरूप का अनुभव अपना कार्य व्यवहार करते हुए भी करती हूँ और अन्य आत्माओं को भी उनके फरिश्ता स्वरूप में देखने का अभ्यास क्या मैंने किया है? क्योंकि अब जैसे समय की समीपता है, बाबा की श्रीमत है हम बच्चों को कि हमें स्वयं को भी फरिश्ता स्थिति में ही सर्व कार्य करने हैं और अन्य आत्माओं को भी हमें फरिश्ता स्थिति में डबल लाइट रूप जिसको बाबा कहता है डबल लाइट रूप में रहना भी है और अन्य को भी अनुभव करना है। सब चेक कर रहे हैं क्या सारा दिन मैं अलौकिक स्मृतियों में रह पाती हूँ? आज कहा ना बाबा ने स्मृति का स्थिति से संबंध है, या मेरा मन सारे दिन सांसारिक स्मृतियों में रहता है। सांसारिक स्मृतियां माना घर गृहस्थ संभालना है, तेरा मेरा, चिंताएं अनेक प्रकार की, बोझ बाबा ने कहा जिम्मेवारी का बोझ है, इतनी जिम्मेवारी है मेरी, इतना काम करना है मुझे। क्या इन स्मृतियों में ही मेरा मन उलझा रहता है या अलौकिक स्मृति जो बाबा ने मुझे स्मृतियां दिलाई हैं, मैं कौन सी आत्मा हूं? और भी इससे आगे मैं पद्मा पदम भाग्यवान, बाबा की दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर वाली, आज मुरली में बाबा ने कहा वो श्रेष्ठ आत्मा हूं। कितने स्वमान बाबा ने हमें याद दिलाए हैं। तो क्या सारा दिन मेरा विचार सागर मंथन चलता है, ज्ञान का मनन चिंतन चलता है या व्यर्थ चिंतन चलता है, पर चिंतन चलता है? क्या चलता है वो देखो। और यदि नहीं चलता है, ज्ञान का चिंतन चलाना मुश्किल होता है, तो समय निश्चित करो। जो भी मेरा समय, मुझे मालूम है कि ये समय मेरा फ्री होता है, तो वो समय बैठकर किसी भी विषय पर या आज की मुरली से ही कुछ पॉइंट्स लेकर के हम लिखें उस पर। तो ऐसे चिंतन चलाने का अभ्यास डालें। शुरू में थोड़ी मेहनत होगी लेकिन फिर धीरे धीरे उस चिंतन में ही आनंद आने लगेगा। से अनुभूति होने लगेगी। बाबा ने कहा ना, चेक करो मेरा कौन सा विटामिन कम है। दुनिया में भी डॉक्टर कहते हैं कि ये विटामिन की कमी है तो आपको ये बीमारी हो रही है, ये विटामिन मल्टी विटामिन आप खा लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मेरा कौन सा विटामिन, मतलब ए फॉर आत्मा बाबा ने कहा, बी फॉर बाबा, सी फॉर साइकिल। तो कौन सी अनुभूति की कमी है, विटामिन की कमी है माना, क्या आत्म अनुभूति की कमी है, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति की कमी है, या ड्रामा में जो मेरा पार्ट है उस पार्ट को समझने में कोई कमी है। तो वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। तो चेक करो। हाँ, मेरे मन को मैं मालिक बनकर चला सकती हूँ, अपनी कर्म इंद्रियों की मैं अधिकारी हूँ। अगर व्यर्थ चिंतन चल रहा है और मैंने कहा फुल स्टॉप, तो क्या मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ? या फुल स्टॉप नहीं लगता है, उसकी बजाय या अपने मन को सभी बातों से न्यारा करके, देह और देह के संबंधों से न्यारा करके, एक सेकंड में बस बाबा और मैं, दूसरा ना कोई, इस स्थिति में मैं स्थित हो सकती हूँ? अचानक, जैसे बाबा कई बार हमको कहते हैं, जो भी होगा वो अचानक होगा, हमको एवर रेडी रहना है और अंत समय मन की स्थिति होनी चाहिए एक सेकंड में सभी बातों से न्यारा। कहीं इस देह और देह की दुनिया के आकर्षण मेरे मन को बांधते तो नहीं है? ये चेकिंग अभी से चाहिए, बहुत काल से जब अभ्यास होगा तब हम वो स्थिति का अनुभव कर पाएंगे जब अचानक का पेपर होगा। वो अचानक का पेपर कभी भी हो सकता है। तो अगर उस पेपर में मुझे पास विद ऑनर होना है, आज की मुरली में बाबा ने कहा पास विद ऑनर माना, किसको याद है पास विद ऑनर माना? पास विद ऑनर होना माना धर्म राज की सजाओं से बचना। और बाबा ने कहा पास विद, कोई किसी को याद है? हाँ, तो खड़े होके बोलो जोर से, जो पास विद ऑनर होंगे वो मेरे गले का हार बनेंगे। अच्छा, ये भी था। और बाबा ने कहा पास विद, हाँ ये तो कह दिया है, पास विद ऑनर होना माना चारों सब्जेक्ट में फुल पास होना। अगर चारों सब्जेक्ट में पास नहीं है तो पास विद ऑनर नहीं हो सकते। से कहा, तो पास विद ऑनर कब हो पाएंगे? अंत समय में जब अचानक का पेपर आएगा तो पास विद ऑनर कैसे हो पाएंगे? जब चारों सब्जेक्ट का ये अभ्यास लंबे समय का हमारा होगा। तो हर दिन हमको चेक करना है। चार्ट तो बाबा हमें कहता है हमें रोज चेक करना है। तो कैसे हमें चार्ट चेक करना है? हाँ, ये पॉइंट्स हैं। कि रोज रात को सोने से पहले मुझे अपने मन की स्थिति सारा दिन कैसी रही, मेरी वाणी कैसी रही, मेरे जो स्वमान की स्थिति है वो कैसी रही, मेरे योग का चार्ट सारे दिन का कैसा रहा। देखते हैं सभी अपना चार्ट, जो रोज अपना चार्ट देखते हैं, कुछ लिखते हैं कुछ देखते हैं, तो लिखते हैं तो थोड़ा सा मैं समझती हूँ कम लिखते हैं। कोई लिखते हैं इस सभा में जो बैठे हैं रोज अपना चार्ट लिखते हैं? दो, सिर्फ दो लिखते हैं, लंबा हाथ उठाइए जो लिखते हैं। अच्छा, पांच लिखते हैं। और जो देखते हैं रोज अपना चार्ट, देखे बिना नहीं सोते हैं सारे दिन का, उसमें ज्यादा है। लेकिन सिर्फ थोड़े से 10-20 को नहीं देखना है, सभी को देखना है अपना चार्ट। अगर चार्ट चेक नहीं करेंगे तो अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। आपने आत्मनिरीक्षण ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ उन्नति करनी है, कहाँ मेरी कमी है, कहाँ मुझे उस कमी को भरना है। और अगर आपने चेक नहीं किया तो आप बाबा के सामने भी रख नहीं पाएंगे उसको। बाबा के सामने नहीं रखेंगे तो जो गलती हो गई उसकी माफी, प्लस जो कमी रह गई उसके लिए बाबा हमें शक्ति भर दे, वो हिम्मत से हमें मदद मिल जाए बाबा की, वो भी नहीं होगा। तो संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। सालों से हम योग अभ्यास करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन संस्कार कहाँ रह जाएंगे? वहीं के वहीं। जो सर्वगुण संपन्न, जो सर्वशक्ति संपन्न मुझे बनना है, आज बाबा ने क्या कहा, जैसा चित्र होता है वैसा ही चरित्र होता है। तो मेरा चित्र मुझे कैसे बनाना है वो हर दिन देखो, बाबा ने आज कहा ये बात। तो मेरा वो चित्र कैसा है, देवी देवता वाला चित्र कैसा है, सर्वगुण संपन्न है ना वो चित्र, तो वो तब बनेगा जब हर रोज उसमें, जैसे एक मूर्तिकार या चित्रकार जब पेंटिंग करता है तो वो चेक करता है अभी इसमें कहाँ कमी रह गई है, मुझे इसको भरना है। तो अपने मन को हमने देखा कि मेरा मन कहाँ तक मेरे कंट्रोल में है, या अभी भी परिस्थितियों के वश होकर के मैं परेशान हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, टेंशन में आ जाती हूँ। इसका मतलब मेरा मन अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अभी मुझ में नहीं आई। तो जो अपने मन को कंट्रोल और रूल नहीं कर सकते वो भविष्य में भी रूलर नहीं हो सकते। कर्मेंद्रियों के अधिकारी माना, स्थूल कर्मेंद्रियों के साथ साथ सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के भी अधिकारी। क्या किसी की सुनी सुनाई बातें मेरी मन की स्थिति पर असर करती हैं? कभी हम न सुनना चाहते हुए भी सुन लेते हैं। कर्मेंद्रियों का रस, बाबा कहते हैं ना, आंखों से जो नहीं देखना है वो देख लेते हैं, कानों से जो नहीं सुनना है उसे सुन लेते हैं, मुख से जो नहीं बोलना है उसे बोल देते हैं, फिर बाद में याद आता है। ये तो बाबा की श्रीमत प्रमाण नहीं है। तो क्या मेरी कर्मेंद्रियां मुझे धोखा दे देती हैं? जो नहीं करना चाहिए वो हम कर लेते हैं। देखो अपने आप को, थोड़ा पॉज करते हैं ताकि आप अपने आप को निरीक्षण कर सको कि वर्तमान में हमारी स्थिति कहाँ है। क्या मेरे पुराने संस्कारों के वशीभूत में अभी भी हो जाती हूँ? जो बाबा के संस्कार हैं, वही मेरे संस्कार हैं। बाबा सदा कल्याणकारी हैं, सदा रहम दिल है, सदा दाता है, सदा स्नेही है, क्षमा का सागर है। तो क्या मेरी सदा यही स्थिति रहती है, बाप समान स्थिति रहती है कि सदा ही कल्याणकारी हैं, सदा ही रहम दिल हैं, सदा ही मास्टर क्षमा के सागर हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं? सदा परोपकारी हैं या कभी कभी स्वार्थी भी हो जाते हैं? मैं जिन शक्तियों को जब चाहे प्रयोग में लाना चाहूं, ला सकती हूं? कहीं मुझे सहन करना होता है, कहीं समाना होता है, कहीं सामना भी करना होता है, कहीं विस्तार को सार में लाना होता है। क्या समय पर शक्तियां हाजिर रहती हैं या जहां सहन करना है वहां मैं सामना कर लेती हूं, जहां समाना है वहां विस्तार कर देती हूं? चेक करो अपने आप को, क्या सभी शक्तियां सही समय पर मुझे सफल बनाती हैं? और अभी अपनी जो सारी चेकिंग की है उसमें आप देखो कि अपने भविष्य पुरुषार्थ के लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी होगी, ताकि मैं तीव्र गति से आगे बढ़ सकूं। सब अपनी प्लानिंग लिखो, जिनके पास भी डायरी पेन है और जो नोट कर रहे हैं, अपनी किन कमियों पर मुझे पुरुषार्थ करना है, किन गुणों को धारण करना है, किन शक्तियों को जीवन में स्वरूप में लाना है, ताकि भविष्य का मेरा पुरुषार्थ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। और अभी हम लास्ट के 10 मिनट योग करेंगे। सभी को मैं कमेंट्री से ये अनुभूति कराऊंगी। सभी सीधे होकर के बैठेंगे। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्मस्मृति में स्थित होंगे। मैं बहुत भाग्यवान भगवान का सिकिल था, लाडला और भगवान की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जिन देवताओं की मंदिर में भक्त पूजा कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मैं कल्प पहले वाली वही देवात्मा हूँ। ये बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई है। बाबा के समान मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। सर्व विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को मुझे शांति का दान देना है। बाबा के समान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। माया के सभी वार पर विजय प्राप्त करने वाली विजय रतन हूँ। कल्प कल्प की विजय आत्मा हूँ। बाबा के समान मैं विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक हूँ। बाबा ने मुझे इतना श्रेष्ठ ऊंच और महान बनाया है। मैं मन ही मन अपने प्यारे शिव बाबा की महिमा की गीत गाती हूँ। मैं क्या थी और बाबा ने मुझे क्या बना दिया है, मैं हर कर्म करते हुए बाबा ने जो मुझे स्मृतियां दिलाई हैं उस स्थिति में रहूंगी। और अन्य आत्माओं को भी ऐसा ही अनुभव कराऊंगी।
डॉक्टर सविता बेन का हम सबकी ओर से बहुत बहुत दिल से थैंक्स देते हैं। और आज हमने अपने आप से जो बातें की हैं वही बातों को और भी सारे दिन में अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर दोहराते रहेंगे। और बाबा हमें जो बनाना चाहता है उस मुहूर्त तक स्वयं को हमें तैयार करना है। यही दिन है जब हम इस गुफा में लंबा समय तक बैठ सकेंगे।